गाथा, रूह वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी परख। सफर की थकान से बदन टूट रहा था, रात भर के जागरण से पलके मुंदी जा रही थी, पर ये दोनों बहनें सोने दे तब ना, पता नहीं कहां कहां की बातें लेकर बैठी थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। वैसे तो मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर चर्चा में अपना नाम बार बार आए तो कोई कहां तक अनसुना कर दे। जिज्जी, मौसी कह रही थी, लड़की को ठीक से खिलाती पिलाती नहीं क्या? एकदम सूखा छुआरा हो रही है, नहीं तो इस उम्र में लड़कियां कैसी गदराई आम किसी होती हैं। अब खाना तो जो हम सब खा रही हैं, वही सीमा भी खा रही है, अम्मा ने उसास भरकर कहा। पर उसके शरीर को लगता ही नहीं है तो हम क्या करें? एक तो उसकी नौकरी भी ऐसी जानलेवा है, सुबह की गई शाम को लौटती है, रोज का 5-7 मील का आना जाना है, स्कूटी पर जाती है, सर्दी गर्मी बरसात सभी झेलना पड़ता है, तभी ना उसका रंग ऐसा काला पड़ गया है। मेरी मानो तो उसकी नौकरी छुड़वा दो, देखो 5-7 महीने में ही रंगत कैसी निखर आती है। नौकरी कैसे छुड़वा दो, ये जो 2-4 ढंग के कपड़े उसके बदन पर नजर आ रहे हैं उस नौकरी की बदौलत ही तो हैं, नहीं तो बेचारी कॉलेज तक तो फटेहाल जाया करती थी, तुमने देखा तो है। क्यों, दोनों भाई मिलकर बहन को पहना उड़ा नहीं सकते क्या? खाना खिला रहे हैं वही बहुत है। क्या बात करती हो जीजी, अगर ऐसा हाल है तो फिर दान दहेज क्या देंगे? तुमने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मान लो कल को तुम्हारे कहने से मैं कहीं बात चलाऊं और लेने देने के नाम पर वह हाथ ऊंचे कर दे तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। अब तुमसे घर की बात मैं क्या कहूं शकुन, बहुएं तो खैर पराए घर से ही आती हैं, उनमें मोह माया ना हो तो समझ में आता है, पर जब अपने पेट जाए ही एकदम परायों का सा व्यवहार करने लगते हैं तब बड़ा जी दुखता है। तेरे जीजा जी की तब बहुत याद आती है। बातचीत अब दूसरे टेक पर चली गई थी। अम्मा बेटे बहुओं का रोना लेकर बैठ गई थी। इस अंतहीन रामायण में मुझे कोई रुचि नहीं थी, रोज ही सुनती हूँ, सुन सुनकर कान पक गए हैं, इसलिए अब मेरे कान अपने आप ही बंद हो गए। कब मेरी आंख लग गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। सोकर उठी तो अच्छी खासी शाम हो गई थी, कमरा एकदम खाली था। बाहर आकर देखा, अम्मा बरामदे में बैठी माला फेर रही थी। किचन में मौसी शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त थी। मैंने भीतर जाकर कहा, मौसी एक आध गैस खाली है क्या? मैं अपनी चाय बना लूंगी। तू क्यों बनाएगी लाडो, मैं हूं ना। फिर गैस पर चाय चढ़ाते हुए बोली, सीमा तू वो वाली क्रीम क्यों नहीं लगाती? कौन सी? अरे अच्छा सा नाम है, देख अब याद ही नहीं आ रहा। मेरी ननद की बेटी है ना कुमुद, तेरी तरह ही सांवली थी, बस 6 महीने वह क्रीम लगाई होगी, एकदम मैदे की लोई की तरह निकल आई। अरे वाह, तब तो कुमुद को उस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए। मतलब छोड़िए, मैं तो मजाक कर रही थी, पर मौसी आजकल मैदे की लोई का फैशन नहीं रहा ना, अब गदराए आमों का जमाना है, अब तो लोग नगद नारायण देखते हैं। ये कौन सी नई बात है, दान दहेज तो जमाने से चला आ रहा है। तब तो माँ बाप एक बार देकर छुट्टी पा जाते थे, पर आजकल लोगों को परमानेंट दहेज चाहिए, यानी कि नौकरी। लड़के वाले अब कन्या का रूप गुण नहीं देखते, वे पूछते हैं नौकरी परमानेंट है या टेम्परेरी। सरकारी है या प्राइवेट। अगर आपकी बिटिया डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है या बैंक में नौकर है, तो लोग यह नहीं पूछेंगे कि लड़की गोरी है या काली, लंबी है या नाटी। वे उसका वेतनमान पूछेंगे, बैंक बैलेंस जानना चाहेंगे। तू भी तो नौकरी कर रही है, फिर तेरी नौकरी पर कोई रीझा क्यों नहीं अब तक? रीझने लायक नौकरी तो हो मौसी, एक प्राइवेट हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। जितने पर दस्तखत करती हूँ उसका 3/4 हाथ में आता है, वह भी इतना कम है कि बताते हुए शर्म आती है। मुझसे ज्यादा वेतन तो सरकारी स्कूल का चपरासी पाता है। तुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती है, मिली भी थी, पर शुरुआती पोस्टिंग अक्सर गांव में मिलती है और मुझे कोई अकेले भेजने को तैयार न था। तो अपनी अम्मा को साथ ले जाती ना, घर पर भी उसे कौन फूलों से तौल रहा है। अम्मा जरा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है, कहती हैं पूरे घर में यही एक कमरा अपना है, यहाँ से चली जाऊंगी तो वह भी छिन जाएगा। कल को तेरी शादी हो जाएगी तो क्या मैं बरामदे में सोऊंगी? अच्छा हुआ कि उसी समय मौसी जी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और यह अप्रिय विषय समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त कहाँ हुआ, चाय की टेबल पर मौसी ने फिर वही रामायण छेड़ दी। आपके पास इतने लड़के काम करते हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखो ना। जिज्जी बेचारी की नींद उड़ गई। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर बाहर निकली तो देखा रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। फौरन वहां पहुंच गई। मौसी क्या बना रही हो, पूरा घर महक रहा है। ये सीमा, तुझे दुहाजू चलेगा? एक क्षण तो मुझे लगा कि वह नाश्ते के बारे में पूछ रही है। उनकी बात समझने में मुझे वक्त लगा। खींच कर कहा, मौसी तुम रात भर क्या मेरे बारे में ही सोच रही थी? सच कह रही है तू, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मेरा एक दिन में यह हाल हो गया तो जीजी कितनी परेशान होंगी। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। देख सीमा, अब तू 28 पार कर चुकी है, इस उम्र का कुंवारा दूल्हा अब कहाँ मिलेगा? आजकल तो लड़के 20-22 साल की उम्र में नौकरी करने लगते हैं, उन्हें 3-4 साल तक रोकना भी मुश्किल हो जाता है। लड़की वाले प्राण खा जाते हैं, 26 से ऊपर तो कुंवारा लड़का मिलना मुश्किल है। मौसी, अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि माता रानी इस मिशन के लिए यहाँ आई है, तो अपनी छुट्टी और पैसा मैं जरा भी बर्बाद नहीं करती। मुझसे बोली शकुन से मिले बहुत दिन हो गए हैं, मेरा जी घबरा रहा है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आई। सोचा कि माँ की इतनी सी इच्छा अगर पूरी ना कर सकी तो मेरे नौकरी करने का फायदा ही क्या हुआ। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आके प्रपंच रचने वाली हैं। प्रपंच रचना पड़ता है बेटा, कुंवारी लड़की घर में हो तो माँ बाप की भूख प्यास गायब हो जाती है। खैर वो बात जाने दे, तू मेरी बात का जवाब दे, तुझे दुहाजू चलेगा? मुझे चुप देखकर बोली, देख बेटा, अपनी उम्र ज्यादा हो जाए तो थोड़े समझौते करने पड़ते। समझौते हमेशा हम ही क्यों करें? ऐसी बात नहीं है, वे लोग भी करते हैं। दूसरी शादी होती है तो वे लोग ना रंग रूप देखते हैं ना दान दहेज मांगते हैं। हाँ, उन्हें तो बस एक अदद बीवी चाहिए, और अगर बच्चे हो तो उनके लिए एक आया। मैंने व्यंग किया पर मौसी ने सिर्फ मेरे शब्द सुने, शब्दों की धार को अनुभव नहीं किया। बोली, बच्चे हैं तो, पर नानी के पास है, तुम नहीं चाहोगी तो नहीं आएंगे। मतलब कि तुमने सुपात्र खोज भी लिया है? मेरी तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या करूं रे, जिज्जी का दुख देखा नहीं गया, वैसे खोजने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। मेरे रिश्ते का देवर है, कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, 2 बच्चे हैं। अभी 6 महीने पहले ही पत्नी का देहांत हुआ है, पीलिया हो गया था। और इतनी जल्दी जनाब फिर से घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए? ये हिंदुस्तान है लाडो, यहाँ तो शमशान में ही प्रस्ताव आना शुरू हो जाते हैं। एक की बेटी मरती है तो दूसरे की बेटी का घर बस जाता है। वाह, क्या सिस्टम है। मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था, पर देखा कि दोपहर लंच पर साहब बहादुर आमंत्रित हैं। रविवार था इसलिए मौसाजी भी घर पर ही थे। परिचय के बाद उन्होंने मुझे इस तरह ऊपर से नीचे तक देखा कि मुझे झुरझुरी हो आई। कुछ लोग नारी देह को नजरों से इस तरह तौलते हैं कि उपकाई आने लगती है। जिस भी कंपनी में यह सज्जन होंगे वहां की महिला कर्मचारियों की तो शामत ही आती होगी। मैंने अब तक नकारात्मक ऊर्जा के बारे में सुना भर था, आज प्रत्यक्ष अनुभव किया। वहां 10 मिनट बैठना भी मेरे लिए कठिन हो गया। एक्सक्यूज मी कहते हुए मैं उठी और भीतर चली गई। देखा अम्मा दरवाजे से लगी खड़ी है, मेरे पीछे पीछे वह भी कमरे में चली आई। बोली, लड़का अच्छा है ना, तुम्हें यह लड़का नजर आ रहा है?
धीरे बोल भवानी, एकदम भोपूसा बजा देती है,
अम्मा ने डपट कर कहा तो मैं चुप हो गई। पल भर बाद अम्मा को एहसास हुआ कि वे भी ऊंची आवाज में बोल रही थी। अपनी आवाज को यथाशक्ति धीमा करके बोली, मिन्नी अब तू भी तो 16 की नहीं रह गई है, तेरे लायक ही तो ढूंढना पड़ेगा। बेचारी शकुन, मेरी परेशानी बस उसी ने समझी है। नायक जी के पीछे ही पड़ गई कि अपने भाई को मनाओ। आजकल इतना कौन करता है बता? अम्मा, मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इस पुण्य कार्य के लिए यहाँ आना चाहती हो तो मैं हरगिज नहीं आती, और तुम्हारी बहन और बहनोई ने बहुत मेहनत की है मैं मानती हूँ, पर मुझे यह आदमी जरा भी अच्छा नहीं लगा, कह देती हूँ। अम्मा एकदम भड़क गई, अब तेरे लिए मैं राजकुमार कहाँ से लाऊं? गांठ में एक ढेला नहीं है, सिर पर बाप का साया नहीं है, भाई लोग कान में रुई दिए बैठे हैं और लाडो के नखरे देखो। किस बलबूते पर इतने भाव खा रही हो, जरा मैं भी तो सुनूं। मैंने अपनी बात कह दी है बस, और शगुन को क्या जवाब दूंगी मैं? वह मेरा सिर दर्द नहीं है, मैंने कहा और मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी मौसी हुलसती हुई कमरे में आई। सीमा, खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाना। अब तैयार किस लिए होना है मौसी, मैं जैसी भी हूं उन्होंने देख तो लिया है। देख तो लिया है री, पर मैं सोच रही थी कि तुम लोग थोड़ा साथ में घूम फिर लो, एक दूसरे को समझ लो। मौसी, यूं हर किसी के साथ घूमने की मेरी आदत नहीं है। हर किसी के साथ तो तुझे हम भी नहीं भेजेंगे लाडो, उसने हाँ कर दी है तभी मैंने घूमने का प्रस्ताव रखा है। अपने पास अब और समय भी तो नहीं है, आज शाम को तो तुम्हें चले ही जाना है, इसीलिए तो मैंने प्रवीण से कहा कि जो कुछ फैसला हो अभी बता दो। आज रात की गाड़ी से ये लोग वापस जा रहे हैं, तो उसने तुरंत ही हाँ कर दी। उनके हाँ करने से क्या होता है मौसी? कुछ मेरी, मैं अपनी बात पूरी कह नहीं पाई थी कि अम्मा ने पीछे से मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सोच लिया कि यहाँ तमाशा करना बेकार है, घर जाकर मौसी को चुपचाप फोन कर दूंगी। मौसी ने मेरे सामने साड़ियों का अंबार लगा दिया, मैचिंग ब्लाउज का बहाना करके मैंने सब निरस्त कर दी। कहा कि मेरे पास भी ढंग की 1-2 साड़ियां हैं, उनमें से पसंद कर लो। साड़ियां तो मैंने लौटा दी, पर मौसी का दिया अमेरिकन डायमंड का सेट मुझे पहनना ही पड़ा, थोड़ा बहुत मेकअप भी करना पड़ा। मौसी को अपनी बहू की बार बार याद आ रही थी। शुभा यहाँ होती तो इतने अच्छे से सजाती कि बस। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मौसी और अम्मा दोनों मुग्ध भाव से मुझे निहार रही थी। प्रवीण, मौसी ने देवर को आदेश दिया, इसे संभाल कर ले जाना और मॉल जरूर दिखा लाना, इनके शहर में अभी मॉल नहीं है। गेट के बाहर कंपनी बहादुर की मारुति 800 खड़ी थी। सब लोग हमें गेट तक छोड़ने आए, मौसा जी भी। ऐसा लगा जैसे मैं आज ही विदा हो रही हूं। मौसी की हिदायतें खत्म ही नहीं हो रही थी और अम्मा की आंखें डबडबा आई थी। अम्मा की डबडबाई आंखें दूर तक मेरा पीछा करती रही। सच तो यह था कि अम्मा के लिए ही मैं इस सैर के लिए राजी हुई थी। मौसी के सामने मैं उनकी हेठी नहीं करना चाहती थी। घंटे दो घंटे का सवाल था, फिर रात को तो हम लोगों को निकलना ही था। घर पहुंचकर मौसी को चुपचाप फोन कर दूंगी, बात खत्म। ठीक से बैठो, बगल से आवाज आई। जी, मैंने कहा ठीक से बैठो, दरवाजे से चिपकी जा रही हो, गिर गिरा गई तो भाभी मुझे खा जाएंगी। क्यों, गाड़ी का लॉक ठीक नहीं है क्या? लॉक वॉक सब ठीक है, नई नकोर गाड़ी है, सब कुछ चाक चौबंद है, पर ढंग से बैठने में हर्ज क्या है? वह जैसा चाहते थे उतना ठीक से तो मैं नहीं बैठ पाई, पर हाँ थोड़ा सा सरक गई। कुछ समय निशब्द बीता। मैं खिड़की के पार देखती रही, बहुमंजिला इमारतें, बाजार, बंगले, घनी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां, एक एक करके आंखों के सामने से गुजरते गए। फिर बस्ती थोड़ी विरल होते होते एकदम ही ओझल हो गई। रास्ते के दोनों ओर खेती खेत नजर आ रहे थे। गाथा में अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी परख का पहला भाग, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आरती श्रीवास्तव।